الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتسألن يومئذ عن النعيم وقال تعالى لئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. طبیعت میں اضمحلال ہے, صبح سے بھی کوئی نیند آئی نہیں اور بار بار پیشاب کا تقاضا بھی ہوتا رہا. نفس یوں کہتا تھا کہ پڑے رہو, میں نے سوچا پڑے رہنے سے بھی کیا حاصل, نہ خود کو کوئی فائدہ پہنچے گا نہ دوسرے اللہ کے بندوں کو. آپ حضرات جس حسن طلب اور حسن نیت کے ساتھ یہاں بیٹھے ہیں, اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے اللہ اس کی برکت سے کچھ باتیں مفید اور کارآمد کہلوا دیں. آج کا جو موضوع ہے وہ کوئی متعین موضوع نہیں, ہر سال جیسا کہ آپ کو معلوم ہے شروعات میں یہاں اوقات کو کس طرح ہمیں گزارنا ہے اسی سے متعلق کچھ اہم اور ضروری باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہیں. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ایک بہت بڑا حق یہ ہے کہ اس کا شکر ادا کیا جائے. شکر جو ہے دو طرح کا ہوتا ہے, ایک زبانی ہوتا ہے ایک حقیقی. زبانی کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنی زبان سے اللہ کا شکر ادا کرے, اللہم لک الحمد شکر لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ علی ما انعمتنا, کہ اللہ تو نے ہمیں یہ جو نعمت عطا فرمائی اس پر تیرا احسان تیرا شکر تیری تعریف. تو زبان سے آدمی اللہ کا شکر ادا کرے, یہ بھی شکر ہی کا ایک طریقہ ہے. اور ایک ہے حقیقی شکر. حقیقی شکر کا مطلب یہ ہے کہ آدمی وہ نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جس مقصد کے لیے دی گئی ہے اس مقصد کو اس نعمت کے ذریعے سے حاصل کرنے کا اہتمام اور کوشش کرے. یہ شکر ہی وہ چیز ہے کہ شیطان سب سے پہلے اسی راہ سے آدمی کو گمراہ کرنے اور اللہ سے کاٹنے کی کوشش کرتا ہے. قرآن پاک میں ہے جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو اپنی بارگاہ سے مردود کیا تو اس نے اللہ تعالیٰ کے حضور جو بہت بڑا دعویٰ یہ کیا تھا لاتین نہ ہوں من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم فلا تجد اکثرهم شاکرین, کہ میں ان تیرے بندوں کو گمراہ کرنے کے لیے اور تجھ سے دور کرنے اور تجھ سے کاٹنے کے لیے ان کے پاس آؤں گا, ان پر حملہ کروں گا, ان کے آگے سے, ان کے پیچھے سے, ان کے دائیں سے. اور پھر آگے کہتا ہے کہ لا تجد اکثرهم شاکرین, میرے اس گویا حملے کے نتیجے میں تو اپنے ان بندوں کو شکر گزار نہیں پائے گا. یعنی تو نے جو نعمتیں اپنے بندوں کو عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں کا حق ادا کرنا اور ان نعمتوں کے ذریعے سے وہ چیزیں حاصل کرنا جن کے لیے وہ نعمت اللہ کی طرف سے دی گئی ہے, اس کا بندے اہتمام نہیں کریں گے. تو حقیقت تو یہ ہے کہ یہ شکر جو ہے بہت بڑی چیز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر نعمت کی زیادتی کا وعدہ فرمایا, لئن شکرتم لازیدنکم, کہ تم نے اگر شکر کیا تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا. ولئن کفرتم ان عذابی لشدید, اور اگر تم نے ناشکری کی, ناقدری کی, تو میری گرفت بہت سخت ہے. اور دوسرے موقع پر باری تعالیٰ بڑے پیارے انداز میں فرماتے ہیں, ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرًا علیمًا. میرا لقمہ دے دیا کرو, مجھے آگے میں حافظ نہیں ہوں. تو ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم, اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے, اس کی قدر کرو گے, تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا, اللہ کائے کو عذاب دے تم کو. اگر تم اللہ کی نعمتوں کا حق ادا کرو, اس کا شکر کرو اور اللہ پر ایمان لاؤ, کان اللہ شاکر علیم, اللہ تعالیٰ تو بڑا قدردان ہے. شاکر یعنی بندہ جب اللہ کی خدمت میں کوئی عمل پیش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی بڑی قدر اور آو بھگت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ تو بندے کے عمل کو ایسا عجیب و غریب انداز سے قبول کرتے ہیں, اگر بشرطے کہ وہ اخلاص کے ساتھ ہو, کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جہاں ذکر اللہ کا بیان فرمایا ہے اللہ ہی کے حوالے سے گویا حدیث قدسی کے اندر, تو اسی میں باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ میری طرف ایک بالشت آگے بڑھتا ہے تو میں جو ہے وہ ایک ہاتھ اس کی طرف آگے بڑھتا ہوں. یعنی مطلب یہ ہے کہ دو بالشت, اور اگر وہ ایک ہاتھ آگے بڑھتا ہے تو میں ایک با یعنی چار ہاتھ اس کی طرف آگے بڑھتا ہوں, اور اگر وہ میری طرف تو وہ چل کر کے آتا ہے تو میں دوڑ کر کے اس کی طرف جاتا ہوں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے اعمال کو جو پذیرائی اور قبولیت عطا فرمائی جاتی ہے, بشرطے کہ اس کے لیے جو شرائط بتلائے گئے ہیں ان کا اہتمام کیا جائے, وہ عجیب و غریب ہے. کوئی بندوں کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں اللہ کے حضور. اللہ تعالیٰ بندوں کے اعمال کے محتاج نہیں ہے اور اللہ کی عظمت و کبریائی اس پر موقوف نہیں, لیکن بندہ جب عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں. تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ شکر جو ہے ایک تو زبانی ہوتا ہے کہ آدمی زبان سے اللہ کا شکر ادا کرے. میں اس کو عام طور پر ایک مثال سے سمجھایا کرتا ہوں کہ اگر آپ کہیں عمرے یا حج میں تشریف لے گئے, وہاں سے واپسی میں جو ہے آپ جو ہے اپنے اعزاء قارب احباب متعلقین کے لیے جہاں ہدایہ اور تحائف لے آئے, اپنے امام صاحب کے لیے بھی ہدیہ لے آئے یہ سوچ کر کہ میں ان کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں. چنانچہ جب آپ کی واپسی پر لوگ ملاقات کے لیے آئے, امام صاحب بھی ملاقات کے لیے آئے, تو آپ نے ایک عمدہ عربی رومال اسی نیت سے ان کے واسطے پہ لیا تھا کہ وہ اس کو سر پر ڈال کر یا امامے کے طور پر استعمال کر کے خطبہ دیا کریں گے. آپ نے ان کی خدمت میں پیش کیا, اور جب آپ نے پیش کیا انہوں نے آپ کو بڑی دعائیں دی, شکریہ ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے, آپ کے عمرے کو قبول فرماوے, نفقات کا نعم البدل عطا فرمائے. اور پانچ سات منٹ تک خوب زبانی شکر ادا کرتے رہے, لیکن ظاہر ہے کہ ان کے اس ظاہری और ज़बानी शुक्र तक आप जो है किफ़ायत नहीं करेंगे, बल्कि आपके दिल में एक ख़ास जज्बा और तमन्ना थी इस रुमाल को इमाम साहब जो है वो खुतबे के अंदर पहने डालेंगे। चुनांचे पहला ही जुमा तो आप तो इसी उम्मीद में कि मेरे वाला रुमाल यहाँ तो डाल करके आएंगे, जा करके पहले आगे बैठ गए, लेकिन जब इमाम साहब तशरीफ लाए तो ये देख कर आपको मायूसी हुई कि वो रुमाल न डाल रहा था। खैर, आपने कुछ अपने आप को उम्मीद दिलाते हुए कि भाई नहीं इस जुमा को न सही, आइंदा जुमा को, दूसरे जुमा को भी ऐसा ही हुआ, फिर तो आपने इंतज़ार करना भी छोड़ दिया। इत्तेफाक की बात कि आपका बच्चा भी उनके पास पढ़ता था, उसी सिलसिले में कुछ बातचीत करने के लिए आपको उनके घर जाने की नौबत आई, बात करना था। जब घर गए, दरवाजे में दाखिल हुए तो दरवाजे ही के अंदर जहाँ पांव रखे जाते हैं वहाँ रुमाल बिछाया हुआ था। जब आप ये मंजर देखेंगे तो क्या कहेंगे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आप दिल में ये तय करेंगे कि आइंदा कोई चीज़ इनको हदिये में दूंगा नहीं। देखो देखो, ज़बानी शुक्र अदा करने में कोई कमी उन्होंने नहीं की थी, लेकिन जो उसका हकीकी मसरफ है, जो मकसद है जिसके लिए उनकी खिदमत में वो पेश किया गया था, वो जब उस पर इस्तेमाल नहीं किया तो आपके दिल में जो कैफियत पैदा हुई आप समझ सकते हैं। तो अल्लाह तबरक तआला की तरफ से जो नेमतें दी जाती हैं, हकीकत तो यह है कि अल्लाह ताला ये चाहते हैं कि अल्लाह की वो नेमतें वहाँ जहाँ अल्लाह ने जिस मकसद के लिए दी हैं वहाँ उनको इस्तेमाल किया जाए। इस वक्त हमारा मौजू यह है कि अल्लाह तबरक तआला ने जिन बेशुमार नेमतों से इस उम्मत को नवाजा है, उसमें एक रमज़ान मुबारक का महीना भी है। ये एक बहुत बड़ी नेमत है जो अल्लाह तबरक तआला ने इस उम्मत को अता फरमाई, और ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने इरशादात के ज़रिए से उसकी अहमियत को हज़रात सहाबा रिदवानुल्लाहि तआला अलैहि मजमईन के सामने बयान फरमाने का अहतमाम करते थे। फ़ज़ाइल रमज़ान में आपने हज़रत सलमान फ़ारसी रदी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत बड़ी सुनी होगी, नबी फरमाते कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाबान के आखिरी दिन में हमको खुतबा दिया, अय्युहन नास क़द अज़ल्लकुम शहरुन अज़ीमुन शहरुन मुबारकुन शहरुन फ़ीही लैलतुन खैरुन मिन अल्फ़ शहरिन शहरुन जअलल्लाहु सियामहु फ़रीज़तन व क़ियाम लैलिही तत्वअन। के लोगो, तुम पर एक बड़ा अज़मत वाला बरकत वाला महीना साया फगन है, वह आया चाहता है, आ रहा है बस। वहाँ जैसे कोई आदमी आ रहा हो हमारे पास, तो उसके हम तक पहुँचने से पहले उसका साया हम तक पहुँच जाता है। तो गोया मतलब गायत क़ुर्ब, बहुत ज़्यादा नज़दीक आने को ताबीर करने के लिए अरबी के अंदर ये जुमला ये अब लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। गोया ये रमज़ान का महीना आ ही गया है, जो बड़ा अज़मत वाला भी है, बरकत वाला भी है। और आगे फिर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसकी जो खसूसियात हैं वो बतलाई। मैं तो बतलाना ये चाहता हूँ कि ये ऐसा महीना है कि अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी अहमियत को बड़े अहतमाम से बयान फरमाते हैं। कुरान में भी शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरान हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरक़ान। कुरान जैसी नेमत जो अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानियत को अता फरमाई, उसके लिए भी गोया अल्लाह की बारगाह में इंतखाब हुआ ज़माने का, तो कौन सा, रमज़ान मुबारक का। हमारे अकाबिर के यहाँ इसका बड़ा अहतमाम रहता था। हज़रत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह तो इसको नेकियों का मौसम बहार फरमाया करते थे, और हज़रत मौलाना सैयद अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि दिल की बैटरी के चार्जिंग का ज़माना है। जाहिर है बैटरी इस्तेमाल करके जब वो बेकार हो जाती है, जब तक कि आप चार्ज नहीं करेंगे दोबारा, तो कल्ब की बैटरी को गोया रूहानियत से चार्ज करने का ये ज़माना है। तो ये रमज़ान का महीना अल्लाह तबरक तआला ने हमको खुसूसियत के साथ अता फरमाया, और फिर उसमें भी आखिरी अशरा गोया ये गोया रमज़ान के महीने का खुलासा है। रमज़ान का महीना अपनी जगह पर सारी अहमियतें लिए हुए हैं, उसमें आखिरी अशरा उसको जो अहमियत हासिल है उसका अंदाज़ आप इससे लगा सकते हैं कि जब نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخر اشرہ آتا تھا تو شد المیزر وایقظ اہلہ، کہ آپ جو ہے اپنے کمر کو کس لیا کرتے تھے، کمر باندھ لیتے تھے، مطلب یہ ہے کہ آخری اشرے کو وصول کرنے کے لیے آپ اپنے آپ کو تیار کر لیتے تھے اور اپنے گھر کے لوگوں کو بھی رات کے وقت جگایا کرتے تھے. دیکھو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عام عادت شریفہ یہ تھی، جیسا کہ حدیث پڑھنے والے جانتے ہیں، کہ آپ رات بھر خود عبادت کرتے تھے لیکن آپ اپنے گھر کے لوگوں کو اس کے لیے خود گویا کوئی اٹھاتے نہیں تھے، مجبور نہیں کرتے تھے، اپنے شوق سے اٹھے. البتہ رات کے آخری وقت میں، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وتر کے لیے ان کو اٹھا دیا کرتے تھے، اور اسی احناب نے وتر کے وجوب پر جن دلائل سے استدلال کیا ان میں ایک یہ بھی ہے آپ کا ان کو اٹھانا اہتمام سے. خیر تو بہرحال، لیکن رمضان کے مہینے میں آخری اشرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھانے کا اہتمام کرتے تھے، گویا یہ اشرہ سونے کا نہیں ہے. اور یہاں بھی آپ جو آئے ہیں سونے کے لیے نہیں آئے ہیں، بلکہ اس اشرے کو وصول کرنے کے لیے آئے ہیں. اب یہاں آنے کے بعد بھی اگر آپ رات کو پڑ جائیں، رات کو تو سونے کا ماحول ہونا ہی نہیں چاہیے. یہاں جو میرے جیسے بوڑھے لوگ ہیں، کمزور ہیں، کہ جن کو تھوڑی بہت بھارا نیند کی ضرورت ہوتی ہے گھنٹہ ایک، تو وہ لیٹ جائیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ویسے بھی سونے کا وقت کتنا رہتا ہے، ناشتے وغیرہ سے آپ فارغ ہوتے ہیں تو ایک تو تقریباً بج ہی جاتا ہے ایک ڈیڑھ، اور پھر ڈھائی بجے اٹھا دیا جاتا ہے، تو گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ سو کے کیا حاصل، اس کے بجائے تو عبادت میں لگ جاتے. یہاں اس بڑے مجمع کے اندر 20 یوں حافظ موجود ہیں، ہر ایک آدمی حافظوں کے ساتھ معاملہ کر لے، دو دو آدمی مل کر کے، کہ بھائی روزانہ ہم کو ایک دو پارے تم جو ہے اس میں نفل کے اندر سنا دیا کرو، تاکہ یہ راتیں اس طرح اللہ کی بات. ویسے تراویح تو الحمدللہ، ویسے مغرب کی نماز جو ہے وہ تو ہم نے جماعت کے ساتھ ادا کی ہی، اس کے بعد اوابین بھی، اس کا بھی اہتمام کیجیے. بہت سے احباب جو ہے یہاں آنے کے بعد بھی دو رکعت پڑھ کے بس پالتی مار کر کے بیٹھ جاتے ہیں، کیا بھائی کچھ کر تو دو، ویسے ہی بیٹھے ہو. جب یہاں آئے ہو، یہاں ہم کسی کام کرنے کے ارادے سے آئے ہیں، تو یہاں آپ کو جو ہے اوابین بھی کا اہتمام کر لینا چاہیے. ایک ایسی نماز ہے جس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے، تو کبھی زندگی کا کوئی لمحہ، کچھ اوقات، کوئی زمانہ ایسا بھی تو ہونا چاہیے، خاص کر کے رمضان جیسا بابر کا زمانہ، کہ اس میں اس نماز کا اہتمام کر لیا جائے. کیونکہ اہل علم ہے، شیطان اور نفس وسوسہ ڈالتا ہے کہ بہترین عمل تو وہ ہے جس کے اوپر مداومت کی جائے. اب جب ہم دو چار دن یہاں ہیں وہاں تک پڑھیں گے تو پھر مداومت تو ہوئی نہیں، پڑھنے سے کیا فائدہ. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رمضان کے اندر پڑھنا یہ بھی مداومت کی ایک نوع اور قسم ہے، سمجھا ہے کہ نہیں. یعنی ایک تو ہے سال بھر آدمی جو ہے اوابین پڑھے، اور ایک یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں اس کا اہتمام کرے. تو کسی عمل کو رمضان کے مہینے میں کرنے کا اہتمام کرے، جیسے ہر جمعہ کو کوئی عمل کرنے کا اہتمام کرتا ہے، آپ ہر جمعہ کو صلاۃ التسبیح پڑھتے ہیں، اس کو بھی کیا کہیں گے، مداومت کہیں گے. حالانکہ روزانہ نہیں پڑھ رہے ہیں، لیکن ہر جمعہ پڑھنے کو بھی مداومت سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو رمضان المبارک کے اندر اگر آپ اوابین کا اور آخری اشرے میں اوابین کا اہتمام کریں گے تو یہ بھی مداومت کی ایک قسم ہے. اس لیے بحیثیت عالم کہ آپ کا عالم جو ہے شیطان آپ کو یہ دھوکہ نہ دے کہ بھائی یہ مداومت نہیں ہے، اس لیے اس کے اندر ابھی کیا کریں گے بلا وجہ. حالانکہ تو نہ کرنے کی باتیں ہیں، کرنے والا تو جس کے ہاتھ میں کچھ بھلائی چاہتا ہے وہ تو جتنا بھی ہاتھ میں آ جائے اس کو کیا سمجھتا ہے، غنیمت سمجھتا ہے. تو بہرحال وقت ہوتا ہے، اعلان کیا جاتا ہے، اب آپ آگے وہاں جائیں، وہاں تک دسترخوان کا یہ تو سارا بھر چکا ہے، وہاں کھڑے رہ کر انتظار، یہاں اطمینان سے آپ. ویسے ہی آپ کو معلوم ہے کہ جب تک کہ تمام مہمان کھانے سے فارغ نہیں ہو جائیں گے وہاں تک آگے دوسرا کوئی عمل ہونے والا نہیں ہے. ایسا کبھی ہوا ہے کہ بھئی کوئی مہمان اس کو کھانا نہ ملا ہو؟ اس لیے آپ کھانے کے متعلق تو اطمینان سے رہیے. آپ کو تو چاہیے کہ اطمینان سے آپ جو ہے وہ اپنی اوابین میں ایسے مشغول رہیں کہ سب کے فارغ ہونے کے بعد آخری آواز جب لگے کہ بھئی جو باقی رہ گئے ہیں وہ آ جاؤ، اور آپ کو خاص طور پر بھائی نماز پڑھ رہے ہو آ جاؤ، تو ایسا होना चाहिए, लेकिन उसके अंदर भी इतना ज्यादा गुलू ना हो कि नहीं, ताकि ऐसे बहुत सारे हो जाएंगे तो फिर इंतजाम जो है वो ये जो है बदनज़मी का शिकार हो जाएगा। खैर, तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ जब आए हैं तो ये भी कर लें इसका, ये अल्लाह ताला के यहाँ इस महीने के अंदर, जैसे कि यही रिवायत हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, उसमें आगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो आदमी किसी नफल अमल के जरिए से अल्लाह का क़ुर्ब हासिल करता है तो रमज़ान के अलावा दिनों में फ़र्ज पढ़ने पर जो सवाब मिलता है, नफल पर अल्लाह ताला वो सवाब अता फरमाते हैं। तो हमारे हजरत मौलाना अहमदुल्ला साहब रहमतुल्लाह अलैह थे, जामिया हुसैनिया के शेखुल हदीस, हमारे गुजरात के अकाबिर उलमा में से थे, और अल्लाह ने आपकी ज़ात से बहुत लोगों को हिदायतें दी, बड़े फ़ायदे पहुँचे, आपके मवाइज जो हैं बड़े मकबूल और मौसर हुआ करते थे। यहाँ हमारे यहाँ इस यहाँ दाबेल में पहला जो एहतिकाफ हुआ सन 1971 में, पहला तो तब से बराबर चल रहा है, आदमी समझिए कि ये क्या चल 16 चल रहा है तो कितने 40 साल हुए, समझ आए कि नहीं। तो हमारी अहमद भाई है ना, कहाँ है नजर आए, अहमद भाई हैं, वो पहले दिन से पहले साल से एहतिकाफ करते हैं, उनको आप मामूली ना समझें, और पूरे महीने का एहतिकाफ करते हैं, ईद की शब में भी घर नहीं जाएंगे, ईद की नमाज पढ़ के घर जाएंगे। तो अब वो तो उम्र का तकाजा है, ऐसी चीज़ें होती हैं, तो हमें उनकी तरफ से जो है अपना ध्यान हटा लेना चाहिए। बाद लोग जो है किसी की ज़ाहरी हैत देख करके उनके मुतालिक फैसला करते हैं, अल्लाह के यहाँ किसका क्या मकाम है अल्लाह बेहतर जानता है। इस ज़िमनन एक बात आ गई, तो वो पाबंद एक आदमी इस मजलिस में ऐसा है गोया जब से यहाँ एहतिकाफ का सिलसिला शुरू हुआ बराबर पूरे महीने का एहतिकाफ पाबंदी से कर रहे हैं। खैर, तो बहरहाल ये चीज़ एक ज़िमनन बतला दी। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था, क्या कह रहा हूँ, अहमदुल्ला साहब उस साल तशरीफ लाए बड़े खुद ही एहतमाम से, और यहाँ जो वाज फरमाया उस वाज में हजरत ने एक जुमला बड़ा अजीब फरमाया कि भाई ये नफल का सवाब जो है फ़र्ज के बराबर मिलता है, तो यूँ समझो कि लोहे का भाव सोने का बराबर, क्या आज अगर ऐलान हो जाए जो है ना कि भाई आज एक दिन के लिए लोहे का भाव सोने के बराबर है, तो लोग अपने घर की खिड़कियों और दरवाज़ों के ऑल ड्राप और ये भी सारी कड़ियाँ वगैरह भी निकाल कर बेट डालेंगे, एक मरतबा तो सोने का भाव हासिल कर ही लो, बाद में वो कड़ियाँ लगती रहेगी, समझा है कि नहीं। तो अल्लाह ताला ने मौका दिया है, तो गोया मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि नफल तो ये अवाबीन का अहतमाम हो, उसके तरह उसकी तरफ से गफलत न बरतें, 6 रकातें ही पढ़ लें, बकौल हजरत हकीम अख्तर साहब नवर अल्लाह मरकदहू के वैसे तो 2 जो सुन्नत मौकदा है उसके अलावा 6, तो कुल मिला करके 8, लेकिन हजरत रहमतुल्लाह ने फरमाया कि भाई अगर कोई मशगूल आदमी बजाय 8 के 6 पढ़ ले, 2 के साथ 4 मिला करके, तो अभी इंशाल्लाह वो फजीलत हासिल हो जाएगी। तो बहरहाल यहाँ तो मशगूल कहाँ हैं, यहाँ इसीलिए आए हुए हैं, अपने आप को इसी मकसद के लिए फारिग कर रखा है, तो जब घर वालों को ये कह कर के आए हैं, दुनिया वालों को ये दिखला रहे हैं कि हम मस्जिद में बैठ कर अल्लाह की इबादत में मशगूल हैं, तो ये तो धोखा हुआ कि यहाँ रह कर के कुछ न करें। देखो, एक धोखा ज़बान से होता है, एक धोखा अपने अमल से होता है। गोया एक मरतबा एक औरत ने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि अल्लाह के रसूल, मेरे शौहर ने कोई चीज़ मुझे दी नहीं है। औरतों की आदत होती है कि कोई जेवर मुझे बना के नहीं दिया, मेरे अब्बा या कहीं से मतलब दूसरी जगह से आया है, लेकिन मैं यूँ जाहिर करूँ कि ये जेवर मेरे शौहर ने दिया है ताकि वो दूसरी सौकन जो है ना उसके दिल में आग लगे, ताकि उसको पता चले कि इसको दिया ने मुझे नहीं दिया। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जवाब में फरमाया, अल मुतशब्बिउ बिमा लम युतिक लाबिस सौबे जूरी, कि जो चीज़ किसी नहीं दी गई है और फिर भी कोई उसका इजहार करता है तो ऐसा है जैसे जूट के 2 कपड़े, यानी 2 कपड़े ही आदमी पहनता है अपने लिबास के तौर पर, कोई पूरा जूट के अंदर सर से पांव तक क्या है वो डूबा हुआ है। तो गोया यहाँ देखिए, तो अब अमली तौर पर हमने अपने आप को ये जाहिर किया है कि हम यहाँ आए हैं, अल्लाह की इबादत में मशगूल हैं तो हमें इसका एहतमाम करना चाहिए। तो बहरहाल बात ये चल रही थी यहाँ के निज़ाम से मुतालिक, शुक्र से मुतालिक, कि भाई इत अवाबीन, बार बार मुफ्ती अबू बकर साहब इसके मुतालिक फरमाते हैं। कल उन्होंने जो तफसीरी हिदायत दी और न करने पर कुछ उन्होंने तंबीहात भी फरमा दी है, तहदीदात भी फरमाई है। और वाकया यह है इस वक्त लोगों के मिजाज में ऐसी गफलत और बेतनाई पैदा हो गई कि बार बार कहने के बावजूद ध्यान देते नहीं। हजरत अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, लायुल्दगुल मोमिनो मिन जौहरिन वाहिदिन मर्रतैन, कि एक मोमिन जो है एक सुराख से दो मरतबा डसा नहीं जाता। उसकी तशरीह में हजरत फरमाते हैं कि मोमिन का मिजाज इबरत हासिल करने का होता है। किसी बात पर, किसी गलती के ऊपर अगर उसको तंबीह की जाए कि भाई ये किया, एक मरतबा की तंबीह पूरी जिंदगी के लिए काफी होनी चाहिए। दूसरी मरतबा उस गलती पर तंबीह की नौबत आनी नहीं चाहिए, गोया हमेशा के लिए अपने आप को उस गलती से पाक कर लेने का एहतमाम करे। यह हजरत ने लायुल्दगुल मोमिनो मिन जौहरिन वाहिदिन मर्रत, उसके बरखिलाफ मुनाफिक और जो है काफिर का हाल ये होता है, बार बार तंबीहें की जाती है, लताड़ा जाता है लोगों के सामने, उनको सख्त से सख्त अल्फाज से कहा जाता है तो भी उनकी गैरत को जोश आता, बस वही अपनी पुरानी रविश के ऊपर कायम रहते हैं। तो बहरहाल तंबीह जब की जाए, एक तो ये है कि यहाँ का एक निज़ाम है, देखो यहाँ का एक मखसूस निज़ाम इसीलिए तरतीब दिया गया है कि यहाँ रहकर आसानी के साथ आने वाले अल्लाह की इबादत कर सकें, अपने आमाल को अदा कर सकें। अब आने वालों में अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो इन उसूल और जवाबित की पाबंदी नहीं करते तो उसका मतलब यह है कि वो इस निज़ाम को क्या करना चाहते हैं, मुख्तल करना चाहते हैं, इस माहौल को ख़राब करना चाहते हैं। जाहिर है कि जो निज़ाम को ख़राब करेंगे, ये कानून के तोड़ने के ऊपर जो सजाएं दी जाती है वो इसीलिए कि अगर एक आदमी कानून शिकनी करेगा तो मिजाज इंसान का ऐसा है कि वो इसको देखकर दूसरा करेगा, दूसरे को देखकर तीसरा करेगा। अच्छे काम में तो लोग जो है वो इक्तिदा करते नहीं, बल्कि ऐसा ही जैसे जिक्र के बाद इस इंतज़ार में रहते हैं कौन पहले बिस्तर बिछाता है, कि एक बिस्तर बिछा कि फटाफट जैसे बिस्तरों की खुलने की आवाज़ें शुरू हो जाती है, तो जो इबादत कर रहे हैं बैठकर जो तिलावत में मशगूल हैं उनकी नकल उतारने का कभी किसी को ख्याल आता नहीं, ये ज़रूर देखेंगे। तो ये तो एक ज़िमनी बात है, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि जो हिदायत दी जाए उस हिदायत को पल्ले बांध लो और उसके मुताबिक करो, और उसके मुताबिक करोगे तो ही यहाँ के जो बरकात हैं वो आपको हासिल होगी, वरना यहाँ आने के बाद इन चीज़ों का अगर आप एहतमाम नहीं करेंगे तो वो ये न समझे कि मैं यहाँ खानकाह में आया था। हजरत मौलाना मोहम्मद इब्ने सुलेमान जांजी रहमतुल्लाह अलैह थे वहाँ दिल्ली निज़ामुद्दीन मरकज के अंदर, तो हमेशा ये ऐलान करते थे कि भाई जो यहाँ आए और यहाँ के आमाल के अंदर शिरकत न करे वो अपने आप को यहाँ आया हुआ न समझे, गया ये न समझे कि मैं यहाँ आया हूँ, इसलिए कि यहाँ तो इसीलिए आए हैं, और जब उन आमाल में शिरकत नहीं की तो फिर कैसे वो अब ये समझ रहा है, गलत फहमी में मुबतला है। तो बहरहाल बात इसकी थी कि भाई अवाबीन का ये एहतमाम होना चाहिए, नफलों का, नफल नमाज के अंदर अवाबीन है, तहज्जुद है, आपको सुबह जब उठा दिया जाए तो उठने में ताखीर न करें। ये यहाँ आकर अपनी आदतों को भी दुरुस्त करना है, हमारा एक मिजाज भाई किसी के मिजाज और तबीयत के अंदर कसल है, सुस्ती है, जल्दी उठता नहीं है, लेकिन यहाँ आया है तो गोया वो अपने नफ्स को टोक करके अपने आप को जल्दी उठने के लिए आमादा करे, उसकी आदत डाले, यहाँ इसीलिए तो आए हैं कि इन गलत और बुरी आदतों से अपने आप को नजात दिलाएं। और यहाँ आने के बाद भी अगर उन आदतों पर जमे रहे और जब उनको तंबीह की जावे तो ये तो उज्र पेश करें कि मेरी तो आँख जल्दी नहीं खुलती, तो फिर तो यहाँ आने का हासिल क्या हुआ। तो बहरहाल जो है तहज्जुद के लिए जब सुबह उठाया जाए तो तहज्जुद का भी फौरन रहता हूँ, जहाँ या तो आप पहले सहरी खा लीजिए बाद में तहज्जुद पढ़िए, या पहले तहज्जुद पढ़ लीजिए फिर सहरी खा लीजिए, जैसा मौका हो। तो बहरहाल उसकी भी सहरी के खाने को बरकत वाला खाना करार दिया गया है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा सहरी तनाउल फरमा रहे थे, जो मौजूद थे उनको ये दावत दी, आओ जो है बरकत वाले खाने की तरफ। उसका बरकत वाले खाने का क्या मतलब है? तो वहाँ आपने फजाइल रमज़ान में उसकी मुख्तलिफ तौजीहात और तशरीहात जो हज़रत शेख रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाई है पढ़ी होगी, उसमें यह कि उसकी वजह से बहुत से और जो ऐसे आदमी को तहज्जुद पढ़ने का मौका मिल जाता है। तो बहरहाल तहज्जुद का भी, तहज्जुद भी कम से कम 8 रकात हैं। बाद लोग उठते हैं, उठ करके 2 रकात पढ़ ली और फिर किसी दीवार का सहारा लेकर जम करके बैठ गए और वहाँ बैठ करके जो है ऊँग निकाल ली। यहाँ मैंने अर्ज किया कि यहाँ तो अपने वक्त को क्या करना है, वसूल एक एक मिनट आपका कीमती है और उस वक्त को जितना 10 दिन का मामला है, कोई लंबा चौड़ा ये है नहीं है, इसलिए उसको ख़ास तौर पर बड़े अहतमाम से आपको इसकी भी कोशिश। तो मैंने कहा अवाबीन तहज्जुद ये, और अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह यहाँ के इस माहौल की वजह से और यहाँ तेरे जो नेक बंदे यहाँ आए हैं जमा हुए हैं उनकी बरकत से तूने ये पढ़ने की तौफीक अता फरमाई, अब मज़ीद जो है आइंदा यहाँ से जाने के बाद भी मुझे इसकी तौफीक अता फरमाए रख और उस पर इस्तिकामत अता फरमा। हो सकता है अल्लाह ताला उसकी बरकत से आइंदा इसकी आदत जो अच्छी चीज़ें लेकर के जाओ। कोई आपको पूछे कि भाई ये आपने तहज्जुद आपकी कब से कहा? अल्हम्दुलिल्लाह जब से यहाँ एहतिकाब में बैठना शुरू किया तब से तहज्जुद की आदत पड़ी हुई है, या तब से जो है अवाबीन का सिलसिला है। हम तो अपने बुजुर्गों की खिदमत में जब जाते थे तो ऐसे आमाल जो उनको करते हुए देखा करते थे उनको देखकर एहतमाम करते थे और अल्लाह के तौफीक से और उसकी फजल से फिर ज़िंदगी भर उसी की आदत अपने अंदर गोया डाले रखने का एहतमाम हुआ करता था। ये तो मकसद होता है सोहबत का, आने का, हाजिरी का, कि भाई ये चीज़ें यहाँ से सीख करके जाएँ और अपनी ज़िंदगी में उसको बरतें, अमली जामा पहनाएँ। तो बहरहाल तहज्जुद का भी ख़ास तौर पर एहतमाम करें, ये और नफल नमाजें जो हैं वो भी पढ़ने का एहतमाम करें। तो बहरहाल ये मैं तो अर्ज़ कर रहा था शुक्र, यानी गोया इस रमज़ान के महीने की कदरदानी, उसको जिस तरह वसूल करने का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया है। अब जैसा कि उसी हदीस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उसमें एक रात है जो 1000 महीनों से बेहतर है, तो जाहिर है अब ये रात जैसा कि हदीसों से मालूम होता है इसी आखिरी अशरे में, शुरू में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतलाया नहीं गया था। आप फरमाते हैं कि उसकी तलाश में आपने पहले अशरे का एहतिकाफ किया, फिर दूसरे का किया, फिर आपने ऐलान फरमाया कि जिन्होंने मेरे साथ दूसरे का भी किया है वो तीसरे का भी करें, इसलिए कि दूसरे अशरे का एहतिकाफ मैंने इसीलिए किया था कि शब कदर हासिल हो, और मुझे बतलाया गया कि वो आखिरी अशरे के अंदर है। तो वह आखिरी अशरे को ख़ास इसी वजह से अहतमाम और फजीलत हासिल, और नबी करीम सलासम भी उसका खसूसी अहतमाम करते थे। तो बहरहाल इसको लैलतुल क़द्र जो है वो मामूली चीज़ नहीं है। ये जो फ़ज़ाइल है ना, रोज़े के फ़ज़ाइल, तरावी के फ़ज़ाइल, क़ुरान की तिलावत के फ़ज़ाइल, लैलतुल क़द्र की अहमियत, ये चीज़ें बार बार पढ़ा करो, बार बार सुना करो, इतनी कसरत से उसको पढ़ो, इतनी कसरत से सुनो कि इन चीज़ों का दिल में यकीन पैदा हो जाए और उसकी वजह से इन पर अमल का हमारी तबीयत के अंदर शौक पैदा हो, रग़बत पैदा हो, और जब भी इन चीज़ों के लिए हम अपने आप को तैयार करें तो रग़बत के साथ और पूरे निशात के साथ इन अमाल को अंजाम दे सकें। गोया ये फ़ज़ाइल इसीलिए तो हैं कि भाई आपको किसी चीज़ की फजीलत बतलाई जाएगी तो उसको सुनकर आपकी तबीयत में उस काम को करने का एक जज्बा पैदा होगा, शौक होगा, रग़बत होगी। तो ये लैलतुल क़द्र की फजीलत भी पढ़ो, आपके पास यहाँ किताबें हैं फ़ज़ाइल रमज़ान या और दूसरी किताबों में उसकी अहमियत बतलाई गई और ख़ुद कुरान की पूरी एक सूरत अल्लाह ताला ने उसके लिए नाज़िल फरमाई। तो बहरहाल आखिरी अशरे की इन रातों के अंदर हमारा कोई लम्हा ज़ाया और बेकार नहीं होना चाहिए। एक बात ख़ास तौर पर याद रहे कि इसकी हम कोशिश करें कि हम किसी गुनाह का इर्तिकाब न करें, यानी हमसे इन रातों में, इन दिनों में कोई गुनाह हमसे सादिर न हो, न हमारी ज़बान से, न हमारी आँख से, न हमारे कान से, कोई गुनाह नहीं। गोया इसका अगर एहतमाम करेंगे तो अल्लाह ताला उसकी बरकत से दूसरे अय्याम के अंदर भी गुनाहों से बचना हमारे लिए आसान फरमा देते हैं। हज़रत शाह अब्दुल अजीज़ साहब देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि आदमी रमज़ान जिस तरह गुजारता है साल भर अल्लाह ताला उसके मुताबिक उसको तौफीक अता फरमाते हैं। रमज़ान में अगर इबादतों का अहतमाम किया, अपने आप को गुनाहों से बचाने का अहतमाम किया और गोया अल्लाह की तरफ माइल रहा, तो उसका रमज़ान के अलावा भी साल के अंदर अल्लाह ताला उसको गुनाहों से उसकी हिफाजत फरमाएंगे। गोया उसका साल जो है वो रमज़ान के मुताबिक गुजरेगा। खुदा ना खास्ता रमज़ान जैसे मुबारक महीने में हमने इन गलतियों का इर्तिकाब कर लिया, आँख की हिफाजत नहीं की, ज़बान की हिफाजत नहीं की, कान की हिफाजत नहीं की, तो फिर यही मुसीबत साल भर हमें पेश आती रहेगी। इसलिए ये चंद दिनों का मसला है, चंद दिनों की एहतियात पूरे साल के लिए हमारी ज़िंदगी के अंदर तब्दीली पैदा कर सकती है, तो ये सौदा बहुत सस्ता है, तो बहरा इसकी भी कोशिश हो। तो मैं गया रमज़ान के वसूल करने के लिए, मैंने कहा था ना कि इसी मकसद के लिए ये शुक्र अब जो है ये जो यहाँ रमज़ान के आमाल यहाँ जो अंजाम दिए जाते हैं, हमारे यहाँ जो एक निज़ाम बनाया हो, पहली बात एक बात याद रहे, ये हमारा ये जो निज़ाम है खानकाही निज़ाम और ये चल ये है, ये दरअसल हज़रत शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद ज़करिया साहब नवरल्लाहु मरकज़हू और हज़रत फ़कीहुल उम्मत मौलाना मुफ्ती महमूद हसन साहब गंगोई रहमतुल्लाह अलैह इन हज़रात की हिदायत के ऊपर और उन्हीं के तरीके पर हम अल्लाह ताला ने उनकी खिदमत में बहुत सारे रमज़ान गुजारने का मौका और तौफीक अता फरमाई। उनके यहाँ जो तरतीब हुआ करती थी, हमारे यहाँ भी उमूमन तरतीब वही इख्तियार की गई है। हाँ, वक्ती और जो है मसाले के पेश नज़र कोई मामूली तरमीम उसमें कर दी जाती है, वरना उमूमन किताबें भी वही पढ़ कर के सुनाई जाती हैं, आमाल में भी उसी वही अंदाज़ इख्तियार किया जाता है, वही सारे तरीक़े हैं। गोया ये जो कुछ कर रहे हैं वो हमारी ईजाद नहीं है, अपने बुज़ुर्गों से हमको जो चीज़ मिली है और रमज़ान को गुजारने की जिनकी तरफ से हमें ताकीदें की गई है, उन्होंने जिस तरह रमज़ान का महीना गुजार के हमको बतलाया, वही शक्लें और वही गोया अमल, वही वो पूरा एक निज़ाम आपके सामने पेश कर रहे हैं, ताकि एक सिलसिला कदीम से असलाफ से जो आ रहा है रमज़ान की वसूलियाबी का, वो आपके इल्म में आ जाए। गोया काबिरन काबिरन नसलन बादा नसली, आप कह सकते हैं कि अब ये सिलसिला उन बुज़ुर्गों से चला हुआ है। तो बहरहाल कहने का हासिल ये कि यहाँ का पूरा निज़ाम जो किताबें और उनके औकात और जो दूसरे मामूलात हैं वो भी बेहमदिल्ला जो है वही इन बुज़ुर्गों इन अकाबिर ही के बतलाए हुए और उनके यहाँ भी इसी अंदाज से गोया ये सारा काम किया जाता था। तो इसलिए ये जो कुछ भी होता है कोई हमारी ईजाद नहीं है, आप इनको बड़े अहतमाम से गोया ये करने का ये करें। यहाँ पहला काम तो ये करना है कि हमें आदाब का लिहाज करना है। अदब जो है ना वही एक ऐसी चीज़ है जो आदमी को अल्लाह की खुसूसी तौफीक और अल्लाह के खुसूसी फजल से जो है वो माला माल कर देता है। अदब ताजेश फजल इलाही बेनह बरसर वो बेरव हरजा के खाही, कि अदब अल्लाह के फजल करम का अल्लाह के फजल का एक ताज है, सर पर रख कर जहाँ चाहो चले जाओ। और बादब बानसीब बेअदब बेनसीब, कि जो बादब होता है अदब के साथ अंजाम देता है काम को, अल्लाह ताला उसको उस काम के फवाइद और समरात से हिस्सा अता फरमाते हैं वरना जो है महरूम रहता है। तो अदब का मतलब क्या है, किसी भी काम को अंजाम देने के लिए उसका जो तरीक़ा साहिब शरीयत ने या बुज़ुर्गों ने हमको बतलाया है उसके तरीक़े के मुताबिक उस काम को अंजाम देना। भाई सोने के आदाब, तो सोने के आदाब का मतलब यह है कि सोने के अमल के लिए हमें कौन सी दुआएं पढ़नी हैं, क्या काम करना है, बावजू रहना है, किस तरह लेटना है, कौन सी करवट लेटना है, क्या दरमियान में आँख खुले तो क्या करना है, सोते वक्त क्या पढ़ना है, उठते वक्त क्या पढ़ना है, वो सारी चीज़ें जो कुछ आमाल कुछ अकवाल, कुछ कहने की चीज़ें कुछ जो है करने की चीज़ें, उन सब के मजमूए को, अब उनमें हर एक की हैसियत अलग अलग होती है, बात चीज़ें वो होती है कि उनका उनका दर्जा फ़र्ज और वाजिब का होता है, बात चीज़ें वो होती है कि उनका दर्जा जो है मुस्तहब का हुआ करता है, दर्जा अलग अलग है लेकिन सबको मजमू तो। जैसे खाने के लिए हम दस्तरखान पर बैठते हैं, रोटी भी होती है, सालन भी होता है, चटनी भी होती है, सलाद भी होता है, पापड़ भी होता है, सब कुछ होता है। अब रोटी जो है वो तो रुकन आज़म है, वो तो वाजिब गया उसका बुनियादी ये है, और वो जो पापड़ हैं वो कोई वाजिब फ़र्ज नहीं है, मुस्तहब का दर्जा रखते हैं। तो गोया ये सबका मजमुआ, हर चीज़ फ़राइज़ वाजिबात सुनन मुस्तहबात सबको मिलाकर के उस अमल को अंजाम देंगे तो वो अमल जैसा होना चाहिए वैसा वजूद में आएगा। हम अपनी दुनियावी लज्जात के अंदर तो उसका बड़ा अहतमाम करते हैं, खाने के लिए जब बैठेंगे तो खाली रोटी पर इक्तिफा नहीं करते, हालांकि हजरत फुकहा ने गेहूं की रोटी ही को काफी करार दिया है। वहां मसला लिखा है कि गेहूं की रोटी के लिए साथ सालन देने का शौहर मुकल्लफ नहीं है। हाँ, जौ की रोटी अलबत्ता उसके लिए साथ होना चाहिए। तो मतलब यह है कि हम तो गेहूं की रोटी क्या पता उसके साथ सालन और पता नहीं क्या क्या, अब तो रोटी ही गायब होगी दस्तरखान से। सालन जो जिमनी था उसने इसालत की हैसियत इख्तियार कर ली, और सारी चीजें को एक चीज की कमी हो तो हमें गवारा नहीं होती। लिबास जब पहनेंगे कपड़े अच्छी तरह धुले हुए होने चाहिए, इस्तरी हुई होनी चाहिए, इस तरह होना चाहिए। हर दुनिया की अपनी लज्जात और ज़रूरतों की तकमील के अंदर हम छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल करते हैं, और ये इबादत अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिरी देकर जिन इबादत को अंजाम देना है या जो काम करने के तरीक़े हमको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाए, खाने का तरीक़ा, सोने का तरीक़ा, मस्जिद में दाखिल होने का तरीक़ा, निकलने का तरीक़ा और इसी तरह नमाज वगैरह के तरीक़े, उनके अंदर इन चीज़ों का जैसे अहतमाम होना चाहिए वो किया नहीं जाता। हालांकि ये है वो चीज़ जिसका हमें अहतमाम करना चाहिए। हमारे बुज़ुर्गों के हालात तो यहाँ लिखा, हमारे सिलसिले चिश्तिया के एक बुज़ुर्ग का नाम भूल रहा हूँ, हज़रत शेख रहमतुल्लाह अलैह ग़ालिबन फ़ज़ाइल सदक़ात में लिखा है, बीमार थे, खुद वज़ू नहीं कर सकते थे, उनके जो खुद्दाम वज़ू करा रहे थे तो वो खिलाल भूल गए, खिलाल वो इशारा कर रहे हैं बार बार गया, ताकि वो फिर उनको ताकि खिलाल, तो गया खिलाल को भी छोड़ने के लिए रवादार नहीं इस बीमारी के अंदर जिसमें खुद वज़ू करने की ताकत नहीं रखते। हमारे बुज़ुर्गों के यहाँ तो इनमें से हर हर छोटी चीज़ जो है उसका बड़ा अहतमाम और इसका रंदा, ये जो है आदाब है ना, ये गोया ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ और अल्लाह ताला के साथ मोहब्बत के गोया ये हैं, हुकूक हैं। तो कुछ तो अल्लाह की अजमत के हुकूक हैं, वो तो फ़राइज़ वाजिबात हैं, और कुछ मोहब्बत के हुकूक हैं, वो क्या हैं, ये आदाब वगैरह, उनकी वजह और यही चीज़ जो है हमारी इबादतों के अंदर जान पैदा कर देती है। तो बहरहाल मैं अर्ज़ कर रहा था कि यहाँ एतिकाफ़ के भी आदाब हैं, रोज़े के भी आदाब हैं, और इसी तरीके से कुरान की तिलावत के भी आदाब हैं, नमाज के भी आदाब हैं, मस्जिद के भी आदाब हैं। तब हम यहाँ आए हैं, इन सारे आदाब को अदा करने का हमें क्या करना है, लिहाज करना है। मस्जिद के आदाब हैं, मस्जिद के अंदर गोया ये अल्लाह का घर है। अब हम दुनिया के किसी मामूली हाकिम के पास जब जाते हैं तो वहाँ क्या है, वहाँ बहुत सी जगह अब तो कानूनी हो गया कि जेब में भी मोबाइल रख सकते, वहाँ बाहर ही जहाँ दरवाजे के ऊपर चौकीदार खड़ा है वहाँ आप अपना मोबाइल जमा करा दीजिए और उसके बाद दफ्तर में जाइए, और जो है उसके बगैर मोबाइल के साथ जा नहीं सकते। तो मस्जिद तो अल्लाह का दरबार है, उसका घर है, वहाँ फिर हम इन चीज़ों में जो है मशगूल रहें। यहाँ आते हैं, सुना है कि भाई ये रात तरावी अभी ख़त्म हुई नहीं कि बहुत से हमारे नौजवान जाके वो पैसेज के अंदर आड़े हो जा करके मोबाइल चालू, इस मोबाइल को तो इन इतने दिनों के लिए आप क्या कर दो, बंद करके रख दो, जब तक के इसके साथ आप जो है अपने आप अपना ताल्लुक कता नहीं करेंगे वहाँ तक ये एतिकाफ का जो सही लुत्फ है वह हासिल नहीं होगा। इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह ने बारी ताला को ख्वाब में देखा तो पूछा कि अल्लाह तेरा वसल, तेरा जो है तेरी मुलाकात और तेरा ये कैसे हासिल होगा। बारी ताला ने फरमाया अपने नफ्स से अपने आप को काट लो, मैं हासिल हो जाऊंगा। तो गोया आप ये ताल्लुकात जो गैर के हैं, और इस वक्त गैर के ताल्लुकात में सबसे बड़ी चीज़ यही है, इसलिए इससे अपने आप को ख़ास तौर, फिर उसमें भी खाली कोई गोया जायज़ काम होता तो वो उसकी इजाज़त नहीं थी यहाँ मस्जिद के अंदर कि आप फ़ोन करते या दूसरी खबरें देखते, यहाँ तो आकर नऊज़ु बिल्लाह बहुत से तस्वीरें और दूसरी चीज़ें देखते हैं। ये तो गोया अपने आप को क्या करना है, बर्बाद करना है। दुनिया की बातें बिला ज़रूरत बातें करने पर कितनी सख्त वईद है। फजा वहाँ फतावा रहीमिया में हजरत मुफ्ती साहब नवर अल्लाह मरकदहू ने इमाम ये इब्नुल हाज मालिकी की अलमुदखल के हवाले से रिवायत जिक्र की है कि जब कोई आदमी दुनिया की बातें करता है तो फरिश्ता उसको कहता है उसको या वली अल्लाह, اے اللہ کے ولی خاموش ہو جا. اس کے بعد بھی اب وہ نہیں سنتا بھلے, لیکن اللہ کا فرشتہ تو یہ بات کہتا, اللہ کے رسول نے جب بات فرمائی تو یہ ہے ہمارے کان میں آواز نہ آئے. بہت سے اللہ کے بندے سنتے بھی ہوں گے, اور جب وہ اس پر بھی خاموش نہیں ہوتا, بات کا سلسلہ جاری رہتا ہے, تو وہ کہتا اسکت یا عدو اللہ, کہ اللہ کے دشمن جو ہے خاموش ہو جا. اور اگر اس پر بھی جو ہے وہ خاموش نہیں ہوتا, بات کا سلسلہ جاری رہتا ہے, تو وہ آگے کہہ رہا تھا اسکت لعنت اللہ علیہ, خاموش ہو جا اللہ کی تجھ پر لعنت ہو. تو یہ دنیاوی باتیں کرنے پر ہے, تو جو گناہ کے کام ہیں وہ یہاں اگر, تو گویا مسجد کے جو آداب ہیں اس کے حقوق و حدود ہیں ان کی ہمیں پوری رعایت کرنی ہے. یہ اللہ کا دربار ہے, اللہ کے آپ نے فضائل نماز میں جو ہے تابعین اور اسلاف کے بہت سے واقعات, جب مسجد میں داخل ہوتے تھے تو ان پر لرزہ طاری ہو جاتا تھا کہ ہم کہاں اللہ کے دربار میں آئے ہیں, گویا کوئی دنیا کی کسی حاکم کے نہیں احکم الحاکمین کے دربار میں آئے ہیں. یہاں ہمیں گویا ان چیزوں کا, مسجد کے آداب کا بھی پورا خیال کرنا ہے. ان آداب میں سے بڑا ادب یہ ہے کہ ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھا جائے. بہرحال اب تو گھنٹی وقت یہ ہوا, آئندہ کل انشاءاللہ. یہ متفرق باتیں ہیں, کوئی ایک موضوع نہیں ہے, اس لیے جو یاد آئے اس کے مطابق میں انشاءاللہ عرض کروں گا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.